भगवत प्राप्ति के लिए अथवा प्रेम लाभ को आते क्या क्रम क्या साधन करना चाहिए, इस विषय पर श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश अनुसार उनका ही असंगी पार्षद अनन्न भक्त रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ भक्ति शास्त्र के लिए एक कीमती चीज है। इसमें लिखते हैं आदि श्रद्धा अतः साधु संग अथो भजन क्रिया ततो अनस्तो निष्ठ रुचि तथा अथा शक्ति ततो भाव तत प्रेम अद्भुत साधकानाम अयम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। साधकों का प्रेम इसी प्रकार से ही प्रकट होता है। क्या साधन करना चाहिए, कई बात आदि स्पष्टता होना चाहिए, शुरू में ही स्पष्टता होना चाहिए। श्रद्धा शब्द का तात्पर्य यही है, भगवान की भगवत्ता में सुदृढ़ विश्वास, भगवान पूर्ण, भगवान सर्वशक्तिमान, उनका बाहर की वस्तु है नहीं, उनकी सेवा करने से कोई काम कमी नहीं रहती, बाकी नहीं रहती, वही विचार में विश्वास, दृढ़ विश्वास में सुदृढ़ विश्वास, ये जिसका हुआ है उसकी श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा के काम भगवान को मूर्ति देखते प्रणाम करते साधु महात्मा देखते प्रणाम करते लौकिक श्रद्धा के लिए करता है। तात्विक श्रद्धा होने से श्रद्धा का जो अंतर्निहित अस्पेक्ट है वो जब आ जाए तब श्रद्धा अलग, और श्रद्धा का जो मॉर्फोलॉजिकल अस्पेक्ट है वो अलग। साधारण आदमी मॉर्फोलॉजिकल अस्पेक्ट में ही वाद्य जो श्रद्धा का दीप है वो देख के ही श्रद्धा समझ लेते, लेकिन तात्विक श्रद्धा नहीं होने से वो भगवान की भक्ति करते हुए भी मेरा कोई काम नहीं हुआ, मुझसे कोई काम नहीं हुआ, मैं तो छोड़ दिया, तो सारी बात उनका जीवन आ जाएगा, संशय आ जाएगा। लेकिन जब भगवान की भगवत्ता में विश्वास हो जाए तब भगवान की सेवा करने से कौन काम बाकी रहती है। इस विषय पर काल मैं भागवत के श्लोक का दृष्टांत दिया था, यथा करोर्मूल निषेचन तृप्तंती तत्कंध भुजोपसाता प्राणोपहाराथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमस्तु पूज्य। श्रीमद्भागवत में नारद जी की उक्ति, जैसा वृक्ष का जड़ में मूल में पानी डालने से सारा हिस्सा की सेवा हो जाती है, ठीक से प्रपर भी होता है, प्राण में आहार देने से खाना देने से जगह सारा इंद्रियों की सेवा हो जाती है। इसी प्रकार अच्छी की सेवा करने से तमाम देवताओं की सेवा हो जाती है, तमाम मनुष्यों की सेवा हो जाती है, जानवर चिड़िया चिड़की कोई बात बाकी नहीं रहती, देव देवी कोई भी बाकी नहीं रहती, जब भगवान की सेवा हो जाती है। यही विश्वास जिसका था उनके नाम भगवान की सेवा होने से किसी की सेवा बाकी नहीं रहती, किसी भगवान तमाम वस्तु का कारण इसलिए प्रमाण भी मैं बताया था कल ब्रह्म संहिता फिफ्थ चैप्टर रेफरेंस, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम तमाम कारणों का कारण है गोविंद, यह परमेश्वर ईश्वर का ईश्वर, इसलिए उनकी सेवा करने से और कोई देव देवी की सेवा नहीं किया, इंद्र की पूजा नहीं किया, अमुक को पूजा नहीं किया, भाई को पूजा नहीं किया, अग्नि को पूजा नहीं किया, इसका भी सोचने का विवेचन कर सस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम प्रणते प्रणतन जगत, जो वेदानु व शस्त्र अध्ययन करते हैं और साध तर्पण साधन अगर करते हैं जो कोई हवन करे जो वो यज्ञ करे जो कोई ऋषि यज्ञ करे तीसरी यज्ञ करे नृ यज्ञ करे भूत यज्ञ करे यज्ञ का समाप्ति में पुरोहित के मंत्र पर आते प्रियता नुंदरी दाश सर्वज्ञे सर्वसमी जगत पुष्टम प्रणीते प्रणीतम जगत हे पुंडरी का सबसे कमलनाया आप प्रसन्न हो जाए क्योंकि तुम देवयज्ञ कर रहा है मुझे बुलाता है किस लिए तुम पितृयज्ञ कर रहा है मुझे बुलाता है किस लिए सर्वयज्ञ सर्वहरि आप हरि आप तो तमाम यज्ञों का कर्ता है भोक्ता है ईश्वर है नियामक है कर्ता है भोक्ता है आप इसलिए आपको बुलाते आप प्रश्न नहीं होने से मेरी पितृ मेरा पितृयज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं होगा देवयज्ञ ठीक नहीं होगा सफल नहीं होगा इसलिए आपके तमाम यज्ञों का कर्ता भोक्ता मालिक है प्रमाण जो गीता पर तो इसके लिए गीता में देखिए कृष्ण कहते आम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव मैं ही तमाम यज्ञों का भोक्ता अर्थात एंजॉयर मैं हूं अहम ही निश्चितम निश्चित मैं ही तमाम यज्ञों का भोक्ता हूं एंजॉयर हम सर्वयज्ञानां भोक्ता च स्वामिन् एवं प्रभुरेव श्रेष्ठ एवं मैं ही श्रेष्ठ प्रभु और कोई प्रभु नहीं है और तमाम बांदा भगवान ने एकमात्र प्रभु तो सही सब गीता गीता का श्रोत हम ही सर्वज्ञानांग भोक्ता च प्रभु रेव प्रभु भी मालिक और भोक्ता भी मालिक इसलिए जगदीश पता भोक्ता नहीं है अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता इसलिए सर्व कारण कारण जो है भगवान उनकी सेवा करने के लिए कम बाकी नहीं रहते यही विश्वास का नाम ये विश्वास का नाम प्रतिष्ठा एक पाल अपना था लेकिन ये कैसे होगा जबरदस्ती हो सकता नहीं होता है जबरदस्ती इसका कारण क्या इसका कारण महत्व की कृपा भगवान की कृपा कही है महत्व की कृपा सही बात आदम श्रद्धा उसके बाद तथा साधु संग श्रद्धा होने का बाद मनुष्य साधु संग करते साधु संग हरक का संग करने के लिए नहीं कहा साधु संग आदम श्रद्धा तथा साधु सदवस्तु में जब विश्वास हो गया सदवस्तु है भगवान तो तब भगवान में जब दृढ़ विश्वास हो गया तब भगवान संबंध या व्यक्ति को जब मिलता है उनमें उनका प्रति आ जाती है तब वो साधु संग करने के बाद हर एक का संग में रुचि नहीं होती है और सब संग में रुचि नहीं होती है साधु संग में रुचि होती है ये पहला होती है श्रद्धा उसका बाद साधु साधु कौन है कैसे पहचानेंगे साधु को पहचानना तो मुश्किल जिसका फगवा कांप रहा है जिसका तिलक कंठी है वो भी नहीं क्या लक्षण से पहचानूंगा इस विषय में एक सवाल उठाई थी कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति थी कर्दम ऋषि का पत्नी देवहूति का कोई पुत्र नहीं था आप कन्या हुई थी मैं कन्या लेकिन पुत्र नहीं तो देवहूति पति के पास प्रार्थना की थी भगवान मुझे एक पुत्र दीजिए पुत्र नहीं है इसलिए मेरा दिल दुखता है, कृपा करके मुझे पुत्र। तब कर्दम ऋषि ने, प्रजापति कर्दम ऋषि ने कहा, देखो मनुपुत्री तुम सोचो पुत्र मिल सकेगा, जब पुत्र हो जाए तब माई संसार में नहीं रहूंगा, मैं उसी वक्त सन्नत हो, तुम सोच के फिर मुझे बताओ। तो जब उनकी सोचने लगी थोड़ा दिन बाद फिर कहते पुत्र बगैर मेरा दिल में शांति नहीं, मुझे पुत्र भी तो अच्छी तरह से सोचो, पुत्र होने से मैं संसार में नहीं रहूंगा, मैं सन्नत चलूंगा, विचार कर सकता। फिर कुछ बात सोचने का पश्चात जो बहुत ही कहने भगवान पुत्र बगैर दिल में शांति आपके बाद बैठे। तो कर्दम ऋषि पुत्री को लेके वन में तपस्या में बैठ गया, तप करने लगा दोनों काम से, तप करते करते भगवान का हमन हुआ, भगवान ही पुत्र रूप से पकड़ा। तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है, एकदम भगवान कर्दम ऋषि और गोभूति की तपस्या से प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं ही पुत्र रूप से उनका पास आ गया। वही पुत्र का नाम है कोपी, भगवान कोपी मृत्यु का पिता। भगवान कोपी जब रूप से गोभूति का पास प्रकट हुआ, जब ही प्रकट हुआ पुत्र बस कर्दम ऋषि साथे साथे नए कन्या को नए प्रजापति के पास अभी अभी देखे चला गई। अभी पुत्र होने का बाद कन्या की शादी के लिए थोड़ा दस्तक, जब कन्या का शादी हो गया कर्दम ऋषि भी चला गया, जो भी एक अगली देखता जो पुत्र भी तो कुछ काम नहीं कर सकता बेटा है। कश्मीर बिंदु हरे वासी भगवान गति रखा भागवत में तृतीय स्कंद में आ रहे पर बिंदु सरोवर का किनारा पर भगवान को फिर जो निवास कर रहा है। माता विभूति अपना पुत्र को भी देव के पास जाते करती, माई तो काम मार्ग में ही फंसा था, जब तुम प्रकट हुआ तुम्हारा आने का बाद मेरा हाथ खुल गया, तो तुम मुझे आग दे दिया, सिर्फ मेरा ही आग दिया तो मेरा पुण्य सारा दुनिया का आग दे दिया, इस दुनिया के आग नहीं थे इसके पहले, आग रहने से क्या होगा, जैसा अंधेरा रहने से आग है दृष्टा दृश्य दोनों वस्तु है तभी दर्शन नहीं होता, जब रश्मि आ जाता है तभी दर्शन होता है। इस माफी अब जब प्रकट हुआ सूर्योदय होने से अंधेरा में एक और चंद्र का चल सकता है, जब ही सूर्योदय होता है रश्मि से सब यथार्थ वस्तु को परिचय मिलता है। आपका अभिभाव का पश्चात ही मेरा अखिल हुआ है कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो भोग मार्ग में भोग के लिए मेरा मन, आप तो भगवान है आप मुझे तो बात नहीं बता दीजिए। पुत्र को भगवान मालूम कैसे पड़ा, जिस वक्त जो बहुत ही गर्भवती थी अंक सत्ता थी उस वक्त ब्रह्मा जी एक दफे आए थे माता कर्दम ऋषि आश्रम पर, आकर अपना पवित्री ब्रह्मा का पुत्र है मनु, मनु का पुत्री है जगभूति, तो पवित्री जगभूति को ब्रह्मा जी ने कहा देखो मनुपुत्री तुम्हारा अभी गर्भ में जो संतान होगा वो मामूली मनुष्य नहीं, इसको तुम आदमी मत समझो, साक्षात विष्णु भगवान तुम्हारा गर्भ से प्रकट हुआ, मनुष्य मत समझो, कुछ पापी व्यवहार कर भगवान प्रकट हो रहा है, तुम्हारी तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान तुम्हारा जात मनुपुत्री जो बहुत ही सुनी थी लेकिन याद नहीं सकती, सारा काम में कन्या शादी आदि करेगा बस फिर आप छोटी चला जाएंगे संसार छोड़ के अभी तक खतरनाक है लेकिन भूल गया जब पति भी संन्यास को चला गया और कन्याओं का भी शादी हो गया तब वैकेंट माइंड हो गया। मेरा पिता वहां से बताया था मुझे कि मेरा पुत्र तो अभी नहीं है तो भगवान तब कदम जो बहुत जाके पुत्र के पास करी जिसके पास मेरा तो भोग मेरा दिल तो भोग नहीं था आप कृपा करके मुझे उठाए अब तो हर एक ज्ञान देते हैं मुझे तो भगवान को भी जब हाथ दिया मुझे भगवान कहते हैं माता जी जब मैं भगवान ही हूं तो भगवान जहां पर प्रकट होता है वहां पर कुछ अज्ञान रह सकता है जहां पर सूरज उदित होता है वहां पर कुछ आंधिया रह सकता है। माता जी कहते हैं उनके अंदर में काम आदि बहुत जगत जब मुझे भगवान ही कहते हो तब मुझसे नहीं कहा तब कैसे माता जी के अंदर में काम रहे जहां काम रहती हूं वो तो राम नहीं रहती भगवान तो वहां पर नहीं रहती। इसलिए माता जी को बात सुन के कपिल भगवान से हाथ दिया लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर जब कहने लगी तब भगवान कपिल जब कहती आप ही तो मेरा गुरु है पिता माता तो गुरु होता है बच्चा को पास लड़का बच्चा को पास तो पिता माता या किसी का गुरु तो आपको मैं कैसे उपदेश करूंगा ये तो नहीं हो सकता तो नहीं आप जगत गुरु है मेरा भी गुरु सारा दुनिया का गुरु आप ही है और बोल के तब माता विभूति पुत्र कपिल जब तक चरण में प्रणाम किया जब प्रणाम किया तब भगवान कहते उन्होंने पूछी थी कि मेरा बंधन का कारण क्या है किससे बंधन का कैसे इससे मुक्ति होगी आप बता दो आपके सारी बात जानते हो मुझे बताओ। तब भगवान को दिल जब माता जी प्राणियों का बंधन का कारण होता है अपना अपना चित्त मुक्ति का कारण भी चित्त लोग तो हम कह देते हैं छोटा खलुष बंध आया मुक्त आत्मनो मतम गुणेश सप्तम बंधार रतम बापुंसी मुक्त हे माता चित्त ही प्राणियों का बंधन का हेतु कैसे गुणेश सप्तम बंधार होती जब गुण में गुण मतलब तम रज सप्त गुण में लपट जाते हैं सब कुछ बंधन हो जाते जीव जब तमगुण में रजगुण में सत्यगुण में लपट जाते तभी बंधन होता है गुणे से सत्संग असत्संग बंधाय रतंग बा पुंसी मुक्त पुंसी मतलब भगवती भगवान में भगवान होता है निर्गुण निर्गुण भगवान में जब रति हो जाती है मनुष्य का तभी मुक्ति होता है। बंधन का कारण कैसे जब जीव त्रिगुण में लपट जाते हैं तब होता है बंधन अगर निर्गुण हरि है निर्गुण हरि में चित्त लग जाता है तभी बंधन खुल जाता है बंधन तो नहीं रहते। तो बताया बदबू आता है कहीं से कुछ लगा के यहाँ पर पता भी जब दुख लगाने के लिए बदबू आ रहा है इधर कुछ मल रहे तो लगा दो इधर बताया कभी दिखा उन्होंने पूछी जो बहुति ने जो त्रिगुण में आसक्ति होने से बंधन होता है त्रिगुण को तो दिखना नहीं पड़ता कैसे समझू लाख कौन से वस्तु त्रिगुण है तब भगवान को तुमको बताया देह शरीर गृह कलत्र भित्तादि गुणात्मक गुणमय प्रकृति होती है त्रिगुणात्मी का तो प्रकृति से पैदा हुई है जो वस्तु तो है गुना उसमें जो फंस जाते असक्त होता है वही वस्तु देह देह कलत्र विद आसक्ति ही बन जाता है यह गुणमय फिर कहती रतंग बापुंग से मुक्त हुई, भगवान में रति होने से सभी मुक्ति का कारण बनते। तब एक सवाल, एक कथा के लिए एक सवाल किया मैंने जो बोलती, जो भगवान को तो देखना ही नहीं पड़ती, कैसे उनमें रति किया जाए? वो वस्तु जितनी नहीं मिलता है उसमें रति कैसे किया जाए? उसके रंजन की चेष्टा, रति मतलब रंजन की, खुश करने की चेष्टा कैसे होता? रतंग बापुं की मुक्ति कबीर भगवान कहते हैं, भगवान को नहीं दिखलाई पड़ता है लेकिन भगवान के लिए जो रहती है, जो साधु लोग साधु की साधु का रंजन करने से ही भगवान की रोटी आ जाती है। इसलिए साधु भगवान के लिए रहते, उनका रंजन करना मतलब भगवान का रंजन करना। साधु का अलग करके कोई खुश नहीं होता। साधु लोग कभी स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकता। साधु का सुख होगा, खुश करना मतलब सुखी करना उनको। साधु का सुख होता है भगवान की सेवा, तो जान ही दिया है भगवान की सेवा के लिए। इसलिए कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करे तो साधु का खुश हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए रहते हैं उनको खुश करो, उनका रंजन करो, तभी भगवत रूप लाभ हो जाए। ये बताया कपिल भगवान। तब माता जो रूप में सॉल थे आप तो हर एक का सम करने के लिए, हर एक को खुश करने के लिए नहीं कहा, साधु के रंजन के लिए कहते हैं। साधु कौन है कैसे पहचानूंगा? साधु तो पहचानूंगा कैसे? तब भगवान कुटिल देव साधु का लक्षण बतला रहा है। इस प्रकार लक्षण द्वारा साधु को पहचानना, क्या लक्षण बतला रहा है। लक्षण जहां पर मिले वो साधु लक्षण का भाग वहां पर कबीर देव कहते हैं, इति सदा कारुणिका सुनिंद सर्वदेही नाम अजात शत्रव साधवो साधु मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये गृहाम् मदर्थे तत् कर्माणो तत् सजन बान्धवा मदस्या कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति तपन्ति विविधस्तापा नैतान् मदगत चेतसः। उधर बरंदे यदि रखत हवा में इधर आ जाएगा। ये बात करते साधु का लक्षण अक्षर क्या इस श्लोक का भागवत जी का स्कंध में किसी एक लक्षण बतलाया। इसमें दो किसी का लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण, एक होता है अरूप लक्षण। साधु का साधु होने से साथे साथे उनका जो जो लक्षण प्रकट होता है इसको कहते तटस्थ लक्षण, और इन आदर हुए कह सकता है गौण लक्षण और स्वरूप लक्षण। साधु होने से ही लक्षण होना ही चाहिए, साधु का स्वरूप में ही लक्षण जरूर रहेगा। इसको कह सकता है मुख्य लक्षण। आप ही पहरा देती तटस्थ लक्षण, छाते छाते जो लक्षण आ जाता है, क्या साधु होने से क्या क्या लक्षण आता है? इति सभा साधु लोग होंगे इतिक्ष मतलब शांति, शांति साधु का लक्षण शांति। जरा से नफरत किया एकदम आपका माफी काटने कूद गया, साधु का लक्षण साधु होने से शांतिलता जरूर रहेगा। इति सदा शांतिला इति सदा साधु लोग कैसा सहनशील, चैतन्य महापुरुष कहते हैं कैसा सहनशील होना चाहिए? वृक्ष जन कटिल हो कुछ ना बोला, सिकाई या मई ले हो करे पानी ना मांगा, जेरी जे मांगा अरे जय अपने धन धर्म वृक्ष सहे अनेर करो। कैसा सहनशील, जैसा पेड़ को काटते हैं काटने से भी जो काटते उसको कुछ नहीं करते। वृक्ष जन काटी हो कुछ ना बोलो कुछ नहीं काटने से। खेल सिकाई या मोहिले हो कह रहे पानी ना मांगो सुख जा रहा है तब भी किसी के पास पानी नहीं मांगते दूसरा को आत्मा के लिए दूसरा को काटने के लिए। लेकिन फिर जो ये महादेव करेगा अपन धन जो आदमी जो चीज मांगता है वो अपना पास करने से देता जो ये महादेव मांगता है जो जो वस्तु मांगता है अपना धन उसको दे देता है। स्वयं धर्म वृष्टि सह धर्म का दुख दुख सहन करते हैं और वृष्टि बड़ी सहन करते हैं। दूसरा करो धूप में जो आदमी उसको दाव काट लिया अच्छा काट दिया तोड़ दिया वो जब आते हैं धूप में दौड़ के हम धूप सहन कर लेते उनको छाया दे अथवा जो उनका दाव तो रहा है वो जब आते उनका फल होने से फल भी उनका मुझे कष्ट दिया इसलिए मैं उनको कुछ सहायता नहीं करूंगा। मुझे कष्ट का दुश्मन क्या मुझसे मैं उनको किसी प्रकार सहायता नहीं करूंगा ये बात साधु का नहीं साधु अपना एक चेयर में जितना है परोपकार ही करते हैं ये साधु का एक लक्ष्य इति सदा तो दूसरा कारुणिका दयालव साधु लोग होंगे दयालु दया का मतलब दूसरा का दुख व अभाव का मोचन करने की चेष्टा दूसरा प्राणियों का जो अभाव है दुख है उसको दूर करने की चेष्टा यह है साधु लोग दयालु दया तीन किस्म की हो सकती है। एक दया शरीर संबंधी नहीं जो मामूली आदमी समझते शरीर संबंधी नहीं दया भूख लगा खाने के लिए बहुत दयालु कापरा नहीं है कापरा खाने के लिए दयालु विद्या नहीं है स्कूल कर दिया विद्या पढ़ाते हैं दया लेकिन यही दया मिलने से भी दुख तो दूर नहीं होता है। भूख लगा कुछ खाने को दे दिया खाना मिलने से चार घंटा छह घंटा बराबर भूख बच्ची उसके बाद फिर भूख कुछ विद्या दिया विद्या से हम पैसा कमाते थोड़ा दुख दूर हुआ लेकिन दुख तो दूर नहीं होता विद्या मिलने से। मकान नहीं था मकान बना दिया दुख दूर हुआ लेकिन तब भी तो वास्तव में दिल से तो दुख दूर नहीं होता है। इसलिए शरीर संबंधी जो दया यह तुच्छ दया इससे उत्कृष्ट दया है मन संबंधी दया मन में अशांति या चंचलता इसको दूर करने से अधिक दया होता है वो चंचल है। खेत ये भी स्थूल शरीर और मन ये भी तो मेटीरियल है चंचल है नश्वर है लेकिन ये शरीर और मन का जो कारण है ज्ञान व आत्मा वो नित्य रहने वाला आत्मा नित्य रहने वाला है वही आत्म संबंधी दया ही श्रेष्ठ दया। आत्मा को क्या दया कर सकती आत्मा के लिए दुख का कारण क्या आत्मा तो सुख स्वरूप है बस्ती है इसमें तो अंधेरा नहीं है बस्ती में अंधेरा नहीं है सूरज में अंधेरा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान में तो अज्ञान नहीं है इसमें दुख नहीं हो सकता आत्मा में दुख नहीं आत्मा सुख स्वरूप लेकिन तब दुख होता किसी आत्मा में थोड़ा आजादी है स्वतंत्रता है अणु स्वतंत्रता है वही स्वतंत्रता द्वारा सुख कमाने के लिए जब वो जाता है विषय का तरफ मैटर का तरफ नाशवान वस्तु का तरफ ध्यान लगाते हैं उससे सुख कमाने के लिए तब दुख मिलता है। और का इसका कारण क्या है वो अपना जो प्रयोजन है परमात्मा उनको जब विमुख हो जाते हैं भगवान को अपना कारण जो भगवान है परमात्मा है ब्रह्म वस्तु है उनको जब भूल जाते हैं विमुख हो जाते हैं कभी माया में अज्ञान में मैटर में फंस जाते कभी उनको दुख होता है। अभी बड़ी दया क्या होगी जो भगवत विस्मृति से भगवान को भूला है इसलिए तो दुनिया में धन लगाया अभी भक्ति का तरफ धन देने से अंधेरा नहीं है भक्ति का तरफ विमुख हो गया सामना में अंधेरा
इसी प्रकार आनंद ब्रह्म रसो वैशा रसन देवायंग अवधारण निभवति। यही जो सिद्धि मंत्र है वेदांत का सूत्र है वही ब्रह्म वस्तु को वही भगवान को जब विमुख हो जाते हैं जीव तब आनंद का विमुख होने से आनंद का अभाव मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए भगवान जीव का दुख का क्या मूल कारण क्या है? मूल कारण है भगवत विमुखता। भगवत विमुखता से क्या होता है? भगवान तो अखंड ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का विमुख होने से अज्ञान मिटता है। तो अज्ञान से उसका जीव का क्या होता है? अज्ञान से स्वरूप भ्रम होता है। एक को और एक कहती अज्ञान अंधेरा में पिता को साला कह सकता है, भाई को मामा कह सकता है, इस प्रकार एक को और एक कह सकता अंधेरा। इसी प्रकार जब भगवत विमुख हुआ, ज्ञान विमुख हुआ, तभी अज्ञान सामने आया। अज्ञान से पहला तकलीफ शरीर को मैं कहने लगा, मैं मनुष्य की जानवर की चिड़िया बस तो मैं मनुष्य नहीं, ये तो मेरा कर्म का फल। मैं मकान बनाया, मकान मेरा मैं मकान हूँ, ये जैसे गंदी बात जूठी बात। इसी प्रकार कर्म से शरीर मिला है और उसका मैं वाक ये शरीर मिला, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी, लेकिन वो भूल जाता है शरीर को माय कहने वाला। फिर मनुष्य माय, ब्राह्मण माय, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि कहने वाला, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये तमाम गलती है, ठीक नहीं है। आत्मा मेरा रियल सेल्फ जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वो मनुष्य जानवर चिड़िया नहीं है, वो ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी इत्यादि कुछ भी नहीं। वो आत्मा तो परमात्मा से है। मम ईवान सजीव लोके जीव भूत सनातन मनस्सस्तानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि च भगवान कहीं तुम जीत जाए, भगवान की प्रकृति का अंश है जीव, ये बात भूल गया। कोई अज्ञानता से आत्मा देह को शरीर को माय समझ मिसकंसेप्शन ऑफ सेल्फ पहला डिफेक्ट आ गया अज्ञान से। भगवत विमुक्ता से अज्ञान मिला, अज्ञान से मिसकंसेप्शन ऑफ सेल्फ हुआ, स्वरूप ज्ञान का अभाव हो गया, स्वरूप में भ्रांति की गई। जब स्वरूप नहीं आत्मा सेल्फ नहीं गलती हुआ तब सेल्फ के लिए जो कर्तव्य हुआ उसमें भी गलती होगा, सेल्फ का स्वास्थ्य का विचार भी नहीं करने के लिए भी गलत आ जाएगा। एक नंबर हुआ भगवत विमुक्ता से अज्ञान लाभ, अज्ञान से स्वरूप भ्रांति, स्वरूप भ्रांति से मैं जब वही असद वस्तु हूं, असद वस्तु के लिए मेरा मान स्वाभाविक होगा, असत तृष्णा आ जाती है। किसकी असत तृष्णा से संख्य भी कष्ट किया उसका बैकग्राउंड, असत तृष्णा के लिए असद वस्तु के लिए प्यास किस लिए मुझे हुआ, उसका कारण असद वस्तु मैं हूं यही मेरा बोध हो गया। मैं तो शरीर हूं, सब शरीर पंच भौतिक है, पंचभौतिक द्रव्य मेरा केंद्र है, इसके लिए मेरा मान और पंचभौतिक द्रव्य तो नशवान है, इसलिए दुख तो असंभव, कौन हटाएगा दुख। इसी प्रकार जीव का दुख का कारण असत तृष्णा, स्वरूप भ्रम से असत तृष्णा आ जाती है, असत तृष्णा से असत कर्म करते, पाप कर्म आदि करते, असत प्यास का निवृत्ति करने के लिए बहुत बुरा काम भी करते, वही असत कर्म से पाप कर्म से दुख मिलता है। दुख का सारा प्राणियों का दुख का मूल कारण मेन कारण अब सब उसने मिजरी भगवत विमुखता वी आर अवर्स बड़े भगवत विमुख है हम सब, यही मूल कारण। यही विमुखता जब हट जाए बस और कोई दुख नहीं। पीछे साधु लोग की दवा क्या होती है? अन्नदान वस्त्रदान विद्या दान भी दया, दवाई दान भी दया, जो दया मिलने से और भीख मांगने नहीं पड़ेगा वो कौन है? भगवत नमस्कार। साधु लोग भगवान को याद कर भगवान में एकदम अबाउट टर्न कर देते, तुम्हारा संबंध भगवान, तुम भगवान का है, भगवान तुम्हारा है, तुम इधर उधर भागता है, ये उनको अटेंशन को जाता है, भगवान का तरफ ले जाते, साधु की जाते भगवत उन्मुख करा देते। इसी सब कारण का साधु लोग होते हैं दयालु, लेकिन जनता भगवत उन्मुख कराने से दया नहीं समझते, समस्त अन्न देता है, वस्त्र देता है, दवाई देता है, ऐश्वर्य का हाथ में बैठा है। विचार करने से सबने कुछ जान लिया, उससे फायदा क्या होता है? फायदा तो नहीं होता है, दुख तो दूर नहीं होता है, सुख तो नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलने से फायदा क्या? इसलिए साधु की दया लक्षण साधु होने से दया लेती, लेकिन और साधु क्या करेगा दूसरा का दुख होने पर? सारा बदमाश दूसरा का दुख में सुख मांगते, अब दूसरा का सुख में तो दुख मांगते, तो तीनों भगत एक भक्ति करके खाते हैं, सारा मटर में चलता है, प्लेन में घूमता है, है? एलिम से आ जाता है, ये असाधु का लक्षण। दूसरा का सुख में अपना दुख होता है, क्या साधु का लक्षण? अब दूसरा का दुख में दुख होता है, साधु का लक्षण। दूसरा का सुख में सुख मानते हैं, साधु का लक्षण। साधु लोग से दयालु कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना एक लक्षण, तमाम प्राणियों का दुख सुहृद जिसका सर्वदेहिना जिसका देह है उसको देही कहते हैं, तमाम प्राणियों का दुख, मनुष्य का दोष, जानवर का दुश्मन ये बात नहीं, कि मछली का दुश्मन ये बात नहीं, कि चिड़िया का दुश्मन ये बात नहीं, शरीर सर्वदेहिना तमाम देहियों का दुख, किसी को बुराई नहीं करते, शरीर सर्वदेहिना अजात सत्य, इसलिए अजात सत्य शांत साधु लोग होंगे, शांत शांत का मतलब निष्काम, कामना रहने से ही चंता, कामना रहे और चंचलता नहीं रहे नहीं होगा, विषय के लिए जिसकी कामना है उसका दिल चंचल जरूर जाए, जब भी मैं साधु नहीं तो फागुआ कपड़ा पीता है तो आदमी समझता है साधु है, तो बिल्कुल मेरा पास आता है भोजन आके देखो स्वामी जी मन को मन बहुत चंचल है, मैं समझता हूँ अच्छी बात, अरे मेरा भी दिल तो चंचल है, तुम्हारा चंचल तो कैसे हटाएंगे, लेकिन तरु का माई गुरु का मुखार में सुना है कैसे हट सकता, तो बता दे सकता है क्या करी क्या, पंखा घूमता है क्योंकि मशीन घूमता है, उसका साथ फूल का हार लगा दिया जाए तभी घूमता रहेगा, ये तो स्थिर है अचंचल है, अभी एक फूल जब उसमें लगा दिया जाए तभी घूमता रहेगा, चंचल वस्तु को आश्रय करने से भी चंचल होगा, और पंखा घूम रहा है एक बड़ा पीला से बांध दिया जाए अचंचल हो जाएगा, फिर वस्तु का साथ लेने से भी स्थिर हो जाए, हम लोग इनका मन जैसे ही स्वाभाविक चंचल है, अभी वही चंचल मन को जब चंचल विषय में लगाएंगे, रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि जो विषय है इसमें जब लगाएंगे तब इसकी चंचलता कैसे दूर होगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते विषय में रहूंगा लेकिन मन जैसे चंचल हो गया अशांति जैसे कैसे हो सकता है, चंचल वस्तु में ध्यान छोड़ो, अचंचल वस्तु में जिंदा को देखो तुम्हारा दिल स्थिर हो जाएगा,